أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں آفیشلی وارد ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ جاننا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ اس پوائنٹ کے ذریعے اور اس نقطے کے ذریعے ہم اس قصے میں وارد ہوں. یہ ایک قرآنی نقطہ ہے، صحیح ہے؟ ابھی تک آپ کے سامنے ایک سیشن میں قرآن کے اوپر بات کی، پھر انبیاء علیہ السلام کی جو حقیقت ہے اور ان ایک مختصر سی بات کی ہم نے، اور پھر قصص انبیاء کی جو اہمیت ہے، صحیح؟ اور آج ایک اور قرآنی نقطہ ہے اور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ایک نقطہ ہے، اور اس کے بعد ہم آج ہی کے سیشن میں 10 سے 15 منٹ کے بعد ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے پہلے حصے میں انشاءاللہ ہم وارد ہو جائیں گے. علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت بیان فرماتے ہیں کہ پورا قرآن، انہوں نے قرآن کو اس طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ڈیوائڈ کیا ہے، صحیح ہے، بلکہ اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ ڈرائنگ کی ہے، چارٹ بنایا ہے قرآن کا، اور اس طرح بیان فرماتے کہ پورا قرآن دیکھیں، یہ پورا قرآن ہے، 6000+ آیات ہیں. اس پورے قرآن کا ایک ہدف ہے، اس پورے قرآن کا ایک ہی ہدف ہے. اور یہ دوسرا نقطہ کہ ہر سورہ، مثلا سورہ حمد ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ قصص ہے، سورہ بقرہ ہے، ہر سورہ کا ایک ہدف ہے، پورے قرآن کا ایک کلی ہدف ہے، اوور آل ایک ہدف ہے. پھر اس کے بعد فرماتے کہ ہر سورہ کا ایک اپنا ہدف ہے، لیکن ہر سورہ کا جو اپنا ہدف ہے وہ اس کلی ہدف سے جدا نہیں ہے، وہ اس کلی ہدف سے جدا نہیں ہے. صحیح، یہاں تک بات کلیئر ہوگی انشاءاللہ. لیکن ظاہر سی بات ہے ہر سورے کی اپنی ایک خاص معموریت ہے، ایک خاص اس کا گول ہے، صحیح ہے، لیکن ایسا گول ہے جو اس اصلی گول کی طرف ناظر ہے، صحیح، نظر رکھتا ہے. اب سورے کے بعد کیا ہے، ہر سورے کے اندر آیتیں ہیں، مختلف ورسز ہیں موجود. فرماتے ہیں کہ ہر آیت یا آیات اس سورے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص معموریت رکھتی ہے، ہر آیت کی یا کیٹیگریز آف آیات کی اس سورے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص معموریت ہے. دوسری طرف سے یہی آیات اس سورے کی قرآن کے اس اصلی غرض سے، اس اصلی ہدف سے مستقل نہیں ہے، جدا نہیں ہے، بلکہ اسی کی طرف ناظر ہے. انشاءاللہ دوبارہ تکرار کر لوں، کوئی حرج نہیں ہے، پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہے. پورے قرآن کا ایک کلی ہدف ہے، ہر سورے 114 سورے ہیں، ہر سورے کا اپنا اپنا ہدف ہے، اپنا اپنا گول ہے، لیکن یہ اپنا اپنا گول اس کلی گول کی طرف ناظر ہے، صحیح ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. اور ہر سورے کے اندر جتنی آیات ہیں وہ اس سورے کے اعتبار سے خاص ہدف رکھتی ہیں، لیکن یہی آیات اس کل قرآن کے ہدف کی نسبت ایک اوور آل گول بھی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے یہ کلیئر ہوگا. اب آپ اسی بحث کو، اسی پوائنٹ کو جب بھی آپ کے سامنے ذکر کیا علامہ طباطبائی کے المیزان سے، اب اس کو آپ یہاں پر تطبیق کریں، آپ انبیاء علیہ السلام کی بحث پہ، وہ اس طرح سے کہ انبیاء علیہ السلام، یعنی ہمیں اس دید سے انبیاء علیہ السلام کے قصے میں اور قصص میں وارد ہونا ہے، خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام، کہ انبیاء علیہ السلام ایک ہدف، ایک حقیقت رکھتے ہیں، کل بھی جیسے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، सही, खुदा का भी इरादा यह है कि अंबिया एक हदफ है, एक इंसान है। सही। अब ये अंबिया जो एक हदफ असली लगते हैं, अब आप बताएं वो हदफ असली क्या है। कल की प्रेजेंटेशन अगर आपको याद हो, वो हदफ असली अंबिया का वजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। तमाम अंबिया उस हदफ असली की तरफ नाजिर है। क्यों? क्योंकि वो वजूद कामिल है, वो इंसान कामिल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लेकिन अब आप दोबारा ये मत पूछें कल की तरह के तो अंबिया बाकी वो इंसान कामिल नहीं है, वो भी इंसान कामिल है, लेकिन मरातिब के एतबार से इंसान कामिल के भी अपने लेवल्स हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत ये है, उनकी क्वालिटी ये है जो उनको बाकी अंबिया से जो है वो मुमताज करती है, जुदा करती है। और एक प्लस पॉइंट है उनका, आज की जबान में प्लस पॉइंट या बोनस पॉइंट कह लें, वो ये है कि नबी अकरम इंसान कामिल के उस आली तरीन मरतबे तक पहुंचे हैं। ये अंबिया भी इंसान कामिल हैं लेकिन नबी अकरम के मरतबे तक नहीं है। सही है, वो उस मरतबे तक जाने की कोशिश में है। सही है। मुमकिन है बाज औकात कुछ बच्चे सवाल करते हैं और ये सवाल उनका बिल्कुल ठीक है। सही है, अगर हम बड़ों के अंदर ये सवाल नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सवाल गलत है। वो सवाल क्या है कि इस वक्त अंबिया अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे, ऐसी बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में होंगे और अइमा अलैहिस्सलाम सब के सब ये सारी हस्तियां जन्नत में हैं। सही है, तो क्या जन्नत में इनकी एक्टिविटीज क्या हैं? जन्नत में इनकी एक्टिविटीज क्या हैं? सही है, क्या कर रहे होंगे? अब बच्चे क्या कहेंगे? बच्चे शायद मुमकिन नहीं कहेंगे, वो लोग बोर हो रहे होंगे, कोई एक्टिविटी नहीं है। सही है, एक्टिविटी जो सारी दुनिया में, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कुरान के अंदर है कि आखिरत की जिंदगी ही, कुरान की ताबीर है कि हियल हयावान। सही है, वो इन दारल आखिरा लहियल हयावान, आखिरत की जिंदगी ही हकीकी जिंदगी है, बस वहां की एक्टिविटीज यहां की एक्टिविटीज से बालातर है, फौकुल आदा है। असातीद और उलमा के खुदा इनको हिफ्स करे, फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम और ये बाकी तमाम हस्तियां इस वक्त बहिश्त में भी वो मरातिब को तय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा तक पहुंचने के लिए, खुदा की फना, खुदा में फना होने के लिए अनलिमिटेड मरातिब है, कोई लिमिट नहीं है। कमाल का, कमाल का कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट फॉर परफेक्शन। जितना इंसान ऊपर जाए परफेक्ट होता चला जाएगा। तो इंशाल्लाह अब ये हमें वाजे हो गया कि हदफ असली अंबिया का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, अब अंबियाए उलुल आजम, सही है, अंबियाए उलुल आजम अलैहिस्सलाम, ये आप समझे उन सूरों की तरह है कि जिनको मबऊस किया गया एक खास शरीयत के साथ, एक खास सेट ऑफ लॉज के साथ, एक खास दीन के साथ। ये कुरान की उन सूरतों की तरह है। सही है, सूरास की तरह है। ठीक, नबी अकरम असली हदफ, अंबियाए उलुल आजम, सही है, उन सूरों की तरह है, और बाकी तमाम अंबिया इन अंबियाए उलुल आजम के ताबे हैं। सही है, इन अंबियाए उलुल आजम के ताबे हैं, और ये अंबिया उन आयात और वर्सेस की तरह है। सही है, लेकिन इन सब का हदफ वही असली हदफ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? क्योंकि नबी अकरम के अंदर वो तमाम सिफात जो मौजूद हैं इंसान कामिल की, वो जामे अंदाज में, कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में मौजूद हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, सिर्फ थोड़ी दिक्कत की जरूरत है और कुछ नहीं। प्रेजेंटेशन को दोबारा सामने रखें और ये मसला काबिले हल है। अब इस दीद से, इस निगाह से, अब आप देखें कितनी खूबसूरत निगाह है अल्लामा तबातबाई ने पेश की है। अच्छा, ये जो अल्लामा, मैं आपके सामने जो बार बार अल्लामा तबा तबाई का नाम ले रहा हूँ, आप ये मत समझे कि अल्लामा तबा तबाई ने क्या अपनी तरफ से जो है वो इज्तिहाद किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुफस्सिरीन का काम ही यही होता है कि एक मुफस्सिर जो तफसीर लिखता है वो तमाम आयात और रिवायात को मद्देनजर रखते हुए उस एक खास मतलब की तफसीर करता है, ठीक है। और बाज ऐसे मुफस्सिरीन हैं जिनको जिनकी ताई तमाम उलमा ने की है, सही है। और अगर एक जो खला है हमारी दीन फहमी के अंदर और दीन को समझने और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन के अंदर, वो ये है कि हम अपने उलमा को नहीं जानते। मसलन अल्लामा तबा तबाई को देख लें, हम कितना जानते हैं अल्लामा तबा तबाई को? अल्लामा के उस्ताद कौन थे? अल्लामा के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद कौन थे? अगर हम इन उलमाओं की जिंदगियों को देखें तो हमें नजर आएगा कि ये उलमा, इनका उस्ताद शागिर्दी का जो चेन है, उस्ताद शागिर्द, ये जो चेन और सिलसिला है उस्ताद शागिर्दी का, ये एक मुकद्दस सिलसिला है, सही। खुदा की ताईद यहाँ पर हासिल होती है। और इसी वजह से इन उलमा की किताबों के अंदर और इनके आसार और दीगर जो इनकी जो किताबें हैं, इनके अंदर बरकत पैदा होती है। और तफसीर मीज़ान को जो बरकत अभी तक नसीब हो रही है आफ्टर 40 ईयर्स तक, ये आप सबके सामने मैंने खुलासा भी पेश किया था, मुख्तसर से मैंने आपसे आपके सामने अर्ज भी किया था कि तफसीर मीज़ान की क्या अहमियत है कि आज का आलिम ये कहता है कि इतने जदीद मसाइल हमारे सामने हैं कि हमें हर 6 महीने बाद एक नई अलमीज़ान जो अल्लामा ने लिखी है उस रविश के साथ हमें हर 6 महीने बाद एक अलमीज़ान की ज़रूरत है। माजरत, ब्रैकेट अगर ओपन एंड क्लोज हो जाता है, लेकिन ये बातें इंपॉर्टेंट है। हमें अपने उलमाओं की शनाख्त का होना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि हम कयामत के दिन पासुखगू हों, जवाबदेह हों, आंसरेबल हो, मुश्किल ना हो जाए हमारे लिए। तो अब इस दीदगाह से आते हैं यहां पर कि सबसे पहला इंसान, देखें अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से होता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से होता है। सबसे पहले नबी हजरत आदम अला नबीना व आलिही व अलैहिस्सलाम, पहला इंसान पहला नबी, सही, पहला इंसान पहला नबी। क्यों? इसकी वजह यह है कि देखें, अब हम इसी को इलेबोरेट करेंगे कि पहला इंसान वो है जो पहला नबी है। क्यों खुदा ने यह काम किया है? आलम का आगाज, इस आलम का आगाज और इस आलम का इख्तिताम खलीफा इलाही से होना है। आलम का आगाज किससे हुआ है? हजरत आदम खलीफतुल्लाह। आलम का इख्तिताम किससे होना है? खलीफतुल्लाह, हुज्जत खुदा से होना है। लिहाजा आलम इंसानी, जो इंसानियत का जो आलम है, ह्यूमन का जो आलम है, हम जो इंसान है, कभी भी ये आलम हुज्जत खुदा से खाली नहीं होगा। मैं और आप जो मामूली इंसान है, कभी भी हुज्जत खुदा के बगैर हमारी जिंदगी बेमाना हो जाती है, हुज्जत खुदा के बगैर। यानी हम मामूली इंसान हुज्जत खुदा के साए में पैदा होते हैं और हुज्जत खुदा के साए में इस दुनिया से जाते हैं। यानी हमारी जिंदगी का पहला दिन, आखिरी दिन और सारी जिंदगी हुज्जत खुदा के साए में बसर होती है। चूंकि ऐसा कानून खुदा ने असल में रखा है, ये खुदा की सुन्नत है, चूंकि ऐसी सुन्नत है तो कभी भी इस आलम में ये आलम कभी भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं हो सकता। इसी वजह से आइम्मा अलैहिस्सलाम की अहादीस की तालीमात में हमें यह मिलता है कि इंसान दाइमन, हमेशा 24 आवर्स, 7 डेज अ वीक, 365 डेज अ ईयर अपने इमाम के साथ महशूर है, लम्हा ब लम्हा। यानी मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, या आप कोई और काम कर रहे हैं, उस वक्त भी इमाम आपकी तरफ नाजिर है, इमाम आपको देख रहे हैं, इमाम मुझे देख रहे हैं, मेरा एक एक अमल इमाम के सामने पेश किया जा रहा है। ना सिर्फ मेरा अमल इमाम के सामने पेश किया जा रहा है इमाम की खिदमत में, बल्कि मैं खुद भी, इंसान खुद भी इमाम को पेश किया जा रहा है। ये अहादीस के अंदर मौजूद है और इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं डिटेल में। बस आलम का आगाज हुज्जत खुदा से हुआ है, खलीफा इलाही से होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की का जो किस्सा है उसकी क्या खसूसियत है? सबसे आली तरीन खसूसियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से की, चूंकि पहले इंसान है तो इंसान की खिलकत का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड ऑफ द ह्यूमन बींग, ये इस किस्से में बयान किया जा रहा है। किस तरह हमारे स्ट्रक्चर को बनाया गया है वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में मिलेगा। सही, यानी इस किस्से में अजीम तरीन आली तरीन नुकात और पॉइंट्स इंसान शनासी और ह्यूमन रिकग्निशन के हमें मिलते हैं। सही, इलाही निगाह से कलाम खुदा। अब मैंने आपको पहले भी कहा लास्ट सेशन में कि खुद खुदावंद मुताल ने अपने कुरान मजीद में, अपने कलाम में जो है, खुद डायरेक्टली जो है हमें ये किस्सा बताया है और डायरेक्टली और मुस्तकीमन हमें इंसान शनासी करवा रहे हैं इस किस्से के जरिए। लिहाजा ये किस्सा, इसको गौर से देखना, इसमें दिक्कत करना, गौर फिक्र करना जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल हो जाता है। इसके अलावा दीगर तरबियती नुका भी इसी किस्से में मौजूद है कि हम इसको इंशाल्लाह जिक्र करेंगे बाद में, लेकिन इस पॉइंट को मैं मजीद इलेबरेट कर लूं। वो ये है कि देखें, साख्तारे वजूद इंसान, इंसान के वजूद का स्ट्रक्चर देखें, पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान पहले नबी हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, यानी इंसान कामिल। खुदावंद मुताल ने इस किस्से के अंदर इंसान कामिल का पूरा स्ट्रक्चर हमें बता दिया है। देखें, लास्ट शायद पहले सेशन में हमने बात की थी कि हमारा मकसद इन सेशंस में इंसान की फिजिकल खसूसियात के बारे में बात करना नहीं है, बल्कि हम इंसान की रूहानी हयात, स्पिरिचुअल लाइफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि इंसान कबल अज़ दुनिया कहाँ था। कबल अज़ दुनिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत, यानी हम सब की खिलकत। यहां पर सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का की खिलकत बयान नहीं हो रही कुरान मजीद के अंदर, बल्कि खुदावंद मुताल ने इस किस्से के जरिए हर इंसान की खिलकत बयान की है। यहां पर अगर हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम का स्ट्रक्चर बयान कर रहे हैं बेउनवान इंसान कामिल, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बयान हो रहा है, हम इंसानों का स्ट्रक्चर बयान हो रहा है। और इसी वजह से ये बहस, ये टॉपिक इस कदर दुश्वार है, पेचीदा है इसको बयान करना। इसी वजह से उलमा ने इस बहस को, किससे ये हजरत आदम को इंसान शनासी के उनवान से, तीन या चार लेवल में बयान किया है। मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूं और शायद इससे ज्यादा मैंने अभी तक नहीं सीखा है, वो लेवल नंबर वन है। लेवल नंबर टू भी मौजूद है इसी बहस का, इसी टॉपिक का। लेवल नंबर थ्री जो कि इज्तिहादी है, वो एक्सपर्ट्स के लिए, हौजवी एक्सपर्ट्स के लिए, इसी बहस को उनके लिए बयान किया जाता है। लेकिन हम अपने वजूद के अंदर अगर तलब रखें तो इसी किस्से के जरिए और इसके अंदर गौर और फिक्र करें, इंशाल्लाह हम उस मकसद तक पहुंच सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बस साख्ता है इंसान, इंसान का स्ट्रक्चर यहाँ बयान हो रहा है। और ये जो मैंने अभी आपके सामने कहा कि बहस दुश्वार है, इसकी दुश्वारी की वजह एक और है। वो वजह क्या है? इस बहस में इंसान के वजूद का स्ट्रक्चर भी बयान किया जा रहा है और हुज्जत खुदा के वजूद का भी स्ट्रक्चर बयान किया जा रहा है। दो स्ट्रक्चर्स हैं, इंसान का स्ट्रक्चर कि हम सब उससे रिलेटेड हैं, और हुज्जत खुदा का भी स्ट्रक्चर यहाँ बयान किया जा रहा है। इस वजह से बहस बहुत दुश्वार हो जाती है। इसी वजह से आप देखें, जहां पर साख्तार वजूद इंसान, जब खुदावंद मुताल इंसान को खल्क करता है तो क्या फरमाते हैं खुदा कि फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अब ये जो खुदा ने अपने आप को मुबारकबाद दी है ये वजूद इंसान की खिलकत के बाद है। वजूद इंसान यानी यहां पर अभी हुज्जत खुदा की खिलकत की बात नहीं हो रही है, यानी अब आप खुद सोचें जब वजूद इंसान इस कदर अजीम है कि खुदा अपने आप को मुबारकबाद दे रहा है तो वजूद हुज्जत खुदा किस कदर अजीम होगा। सही, उसकी खिलकत उसका स्ट्रक्चर किस कदर अजीम होगा। बस खुदावंद मुताल यहां पर ये काम अंजाम दे रहे हैं। और इस किस्से को किस फॉर्म में बयान कर रहे हैं अब आप बताएं मुझे, खुदावंद मुताल इंसान के इस स्ट्रक्चर को किस फॉर्म में हमें बता रहे हैं, अल्फाज, कलिमात, वर्ड्स, सेंटेंसेस। देखें चूंकि खुदावंद मुताल खालिक इंसान है तो खुदावंद मुताल खालिक अल्फाज भी है, खालिक सेंटेंसेस भी है, खालिक जुमलात भी है, खालिक कलिमात भी है। इसी वजह से खुदावंद मुताल ने चूंकि खालिक कलिमात है, कलिमात को वर्ड्स को खुद उन्होंने खल्क उसने खल्क किया है खुदा ने, तो इस किस्से को बयान करने के लिए भी खुदा ने दकीक तरीन, और आप ये समझे कि दकीक तरीन और उसको क्या बोलते हैं, नापतोल कर जो है वो अल्फाज और उसके मानी और उसके मीनिंग्स का चुनाव किया है। सही है, और ये किस्सा हमारे लिए जो है ड्रॉ अप किया है, उसको तरसीम किया है हमारे लिए। सही है, तो खालिक इंसान, खालिक अल्फाज, अब हमारे सामने ये अल्फाज मौजूद हैं। अब उलमा की मदद से, मुफस्सिरीन की मदद से, अइम्मा अलैहिस्सलाम की तालीम की मदद से हम आए और इस किस्से में वारिद होते हैं। लिहाजा आए कुरान के महजर में शरफयाब होते हैं और ऑफिशियली हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत को इंसान कामिल के उन्वान से हम यहाँ पर मुताला करते हैं, मुबाहिसा करते हैं आपस में। सही है, अब इससे पहले हम वारिद हों चाहते हैं कि बेहतर ये कि अदब के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या आदम सफवतिल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं, उनसे इज़न मांगते हैं, उनसे इजाजत मांगते हैं और उनसे तवस्सुल करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि वो हमारे लिए दुआ करें कि इस किस्से को और इंसान कामिल को हम दुरुस्त समझ पाएं ताकि उस मसीर में, उस रास्ते में इंशाल्लाह वारिद हो जाएं। इसी तरह चूंकि तमाम अंबिया का हदफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लिहाजा हम आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इज़न मांगते हैं, उनसे उनसे हम दुआ लेते हैं और उनसे हम मदद लेते हैं इंशाअल्लाह। हमें यकीन है वो हमारे लिए दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा 8 मकामात पर आया है, 8 मुख्तलिफ जगहों में ये किस्सा आया है। चार ऐसे मकामात हैं जहां पर मुफस्सल खुदावंद मुताल ने इस किस्से को बयान किया है, इसके मुख्तलिफ सब टॉपिक्स समेत, और 4 ऐसी जगहें हैं जहां पर मुख्तसर अंदाज में खुदा ने यहां पर बयान किया है। इसके मुख्तलिफ उनवान हैं, मसलन खिलकत हजरत आदम अलैहिस्सलाम में हजरत आदम को अस्माए इलाही की तालीम देना, सजदे मलाइका, शैतान का सजदे से इनकार करना, हुबूत आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हुबूत करना जमीन पर और जमीन में जिंदगी शुरू करना, ये सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स कुरान के अंदर आए हैं। सबसे पहली आयत जो इस किस्से के बारे में हमें मिलती है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 30 है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाला रब्बुका लिलमलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफतुन। देखें अब आयत लंबी है, हम पहले इस हिस्से को देख लेते हैं। वइज़ क़ाला रब्बुका लिलमलाइकति, और जब खुदावंद मुताल ने मलाइका के लिए कहा, फरमाया कि इन्नी, मैं यकीनन बेशक जाइलुन जाल, जालुन यानी जाल करना, बनाना, क्रिएट करना, फिल अर्वे जमीन में खलीफा को। देखिए जिस तरह मैंने तर्जुमा किया है उसी तरह आप करें, तह तो लफ्जी तर्जुमा करें, इन्नी जाएलुन फिल अर्वे खलीफा। सही है। अब खुदावंद मुताल ने खिलकत इंसान से पहले, इससे पहले कि खुदावंद मुताल इंसान को खल्क करे, हजरत आदम की खिलाफत की बात मलाइका को बता रहे हैं। सही, इंसान खल्क नहीं हुआ है, ठीक है, इंसान यहां पर खल्क नहीं हुआ है। इस खिलकत से पहले खुदावंद मुताल ने हजरत आदम की खिलाफत जो है, इंसान की जो खिलाफत है, उसके बारे में मलाइका को बता रहे हैं। अब यहां पर तवज्जो, यहां क्या करनी है, नुक्ता क्या है इस आयत के पहले हिस्से में, वो नुक्ता ये है, गौर से सुने इसको। देखें खुदावंद ने क्या फरमाया, इन्नी जाहिलुन फिल अर्ज खलीफा, नहीं फरमाया खलीफतुन फिल अर्ज, देखें फिल अर्ज खलीफतुन फरमाया है, ना खलीफतुन फिल अर्ज। अब आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है खलीफतुन फिल अर्थ, खुदा कह दे या फिल अर्थ खलीफा। मैंने आपको कहा ना, खुदावंद मुताल ने चूंकि अल्फाज का भी खालिक है खुदा, तो खुदा ने यहां पर, और खुदा के तमाम काम हकीमाना होते हैं, अबस नहीं होते, तो खुदा का एक एक लफ्ज का चुनाव, एक एक हर्फ का चुनाव, एक एक जबर जेर का चुनाव भी खुदा का हकीमाना है, अबस नहीं है, बेहिकमत यहां पर नहीं है। खूब क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा, देखें आप, अगर खुदावंद ने मुताल ये फरमाया कि खलीफतुन फिल अर्ज, पहले उसकी तौजीह देते थे, इन फिल अर्ज खलीफतुन की मैं आपको तौजीह दे रहा। देखिए यहां पर खलीफा बगैर किसी कैद के आया है, देयर इज नो कंडीशन यहां पर, फिल अर्ज खलीफतुन। लेकिन अगर खलीफतुन फिल अर्ज कहें तो क्या हो जाएगा, मुतलक नहीं होगा, यानी यहां पर कैद आ जाएगी, यानी यहां पर खलीफतुन फिल अर्ज की कैद क्या है, खलीफा की कैद क्या है यहां पर, फिल अर्ज खलीफा, मैंने बनाया खलीफा जमीन में, क्या खुदा ने ये फरमाया खलीफा जमीन में, नहीं, खुदा फरमा रहा है फिल अर्ज खलीफतुन, मैंने इस जमीन में बनाया है खलीफा, यानी ये खलीफा सिर्फ जमीन के लिए नहीं है, खलीफा अर्जी नहीं है, खलीफा जमीनी नहीं है, बल्कि तमाम अवालिम के लिए ये खलीफा है, आलम बरजख के लिए भी ये खलीफा है, आलम मलकूत के लिए भी ये खलीफा है, आलम आखिरत में भी ये खलीफा है, तमाम अवालिम वजूदी में ये खलीफा है, जितने भी यूनिवर्सेस मौजूद हैं इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद, सही है, बरजख और उसके बाद जितने भी यूनिवर्स और अवालिम मौजूद हैं, ये खलीफा उन सब के लिए खलीफा है। लेकिन अगर खुदावंद ने मुताल ये फरमाते हैं खलीफतुन फिल अर्ज, यानी ये खलीफा सिर्फ जमीन के लिए है, ये खलीफा जमीनी है, सही है, जबकि खुदा ने ऐसा नहीं फरमाया है, तो ये बहुत ही दिक्कत तलब और गौर तलब मतलब था जो अल्लामा ने यहां पर जिसकी तौजीह दी। अब आप देखें, देखें कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जब तक आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब तक मैं ये समझूंगा कि या सब कुछ समझ में आ गया है या खुदा ना खासा कुछ भी समझ में नहीं आया है। सही है। तो इंसान जाहिर सी बात है उस वक्त सवाल नहीं करता जब जो है वो उसको बिल्कुल समझ में आ गया है या बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सही है। कोशिश करें इसको डिस्कशन में लाएं अपने दोस्तों के साथ, इस अमीक बहस को, टॉपिक को डिस्कस करें आपस में, ये काबिले डिस्कस है। सही है। और कोशिश करें अगर आप YouTube पे इसको देख रहे हैं, कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तो आप इसको YouTube पे कमेंट्स पे डालें ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस बहस को किस कदर फॉलो कर रहे हैं और आया आपकी नज़र में ये बहस इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, आया इज दिस वन ऑफ द बेसिक टॉपिक्स वी नीड इन दिस वर्ल्ड इन दिस टाइम और नॉट। तो इसको इंशाल्लाह मैं आपके जवाब का उम्मीद है मुंतजर रहूंगा। हो, मलाइका ने ताज्जुब के साथ और हैरानी के साथ यहां पर कहा, जब खुदा ने खबर दी तो मलाइका ने ताज्जुब का इजहार किया और इस हैरानी में और ताज्जुब में ये कहा खुदा से, यानी ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जिस तरह बास बच्चे होते हैं ना, माँ बाप से बिल्कुल अकड़ के बात करते हैं, ये आपने क्या फैसला किया है, ये आपने ऐसा क्यों इरादा किया है। नहीं, ये अंदाज नहीं था मलाइका का। सही है, मलाइका ने अदब के साथ पूछा है। अब वो क्यों पूछा है, वो इसकी हिकमत अभी आपके सामने पेश करेंगे, उसकी वजह। देखिए, मलाइका ने ये पूछा कि अतजअलु फीहा, क्या आप एक ऐसे खलीफे को खल्क कर रहे हैं कि मैं युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, जो जमीन में फसाद बर्पा करेगा और खून रीजी करेगा, कत्ले आम करेगा, जबकि व नहनु, यानी हम मलाइका, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुकद्दिसु लक, हम तो तेरी तस्बीह और तेरी तकदीस करते हैं। अगर खलीफा बनाना है तो आप हमें बनाएं। सही है, आप ऐसे ऐसे ऐसी मखलूक को खलीफा बना रहे हैं जो जमीन में जाकर खूनरेजी करेगा। सही, तो यहां पर आप देखें मलाइका ने यहां पर क्यों सवाल किया है। सही है, देखें इसकी वजह यह है कि मसलन क्यों खली क्यों इंसान जो है वो खूनरेजी करेगा। इसकी वजह यह कि इंसान खलीफा इलाही है, और खलीफा इलाही इंसान कामिल, उसके अंदर अनलिमिटेड अनलिमिटेड लामहदूद नामुतनाही इस्तेदाद मौजूद है। सही, अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज खलीफा के अंदर मौजूद होती हैं, खलीफा इलाही के अंदर नामुतनाही इस्तेदादें मौजूद होती हैं, जबकि ये जमीन, ये दुनिया, ये महदूद है, ये महदूद है। मलाइका ये पूछ रहे हैं खुदावंद मुताल से कि आप एक लामहदूद हकीकत को, एक लामहदूद इंसान को, जिसके अंदर लामहदूद और अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं, उस लामहदूद को महदूद में भेज रहे हैं। जब नामुतनाही मुतनाही में जाएगा तो यकीनन फसाद और खूनरेजी बर्पा करेगा वो, क्योंकि उसके लिए तो बिलाकर उसके अंदर अनलिमिटेड ख्वाहिशात हैं, अनलिमिटेड जो है वो पावर और कुदरत का जो है वो खाहा है। सही है, उसके लिए तो ये लिमिटेड जमीन कम पड़ेगी उसके लिए। तो ये मलाइका का आप देखें एतराज बिल्कुल बेजा है, बिल्कुल उनका सवाल सही है खुदावंद मुताल से। अब एक और सवाल, मलाइका को कैसे मालूम? एक तो ये बात ठीक है कि लामहदूद और महदूद वाली बात, दूसरी वजह के मलाइका को, मलाइका ने ये सवाल किया, उसकी वजह यह है कि अब ये उलमा फरमाते हैं, इसके मुख्तलिफ जवाबात हैं तफसीरों के अंदर, मुफस्सल बहस है। सही है कि मलाइका को कैसे मालूम कि इंसान अहले फसाद है, अहले खूनरीजी है? कैसे उनको मालूम हुआ कि इंसान एक दूसरे के साथ समझौता नहीं कर सकता? सही है, इसकी वजह अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह एक ये जवाब देते हैं कि एक तो वो लामहदूद वाली बात, दूसरी बात है कि मलाइका ने पहले देखा था कि कुछ ऐसे इंसान पहले मौजूद थे जिसको खुदावंद मुताल ने खल्क किया था, और उन इंसानों ने जमीन में फसाद और खूनरेजी बर्पा की थी। अब यहां पर बाज़ उलमा ये जवाब देते कि इसकी इसका जवाब ये है, और शायद जवाब बिल्कुल शायद दुरुस्त भी होगा, कि वो जो इंसानों को खुदा ने खल्क किया था पहले, कि जिन्होंने फसाद और खूनरेजी बर्पा की थी, और मलाइका ने उनको देखा था, और उनको देखते हुए मलाइका ये एतराज कर रहे हैं, वो इंसान खलीफा नहीं था, वो इंसान खलीफा नहीं था। लेकिन बात ये कि ये इंसान जिसको अभी खुदावंद ने मुताल खल्क कर रहा है, ये खलीफा इलाही है, ये कभी भी खूनरेजी बर्पा नहीं करेगा ये। सही, अब ये एक जवाब है, ठीक है, इसके ऊपर मुमकिन है गौर फिक्र करें तो शायद जवाब बातिल हो जाए, शायद जवाब नल एंड वाइड हो जाए, लेकिन फिलहाल इस जवाब पे हम कम तवज्जो करेंगे, और इस जवाब पे जो पहले आपके सामने जिक्र किया था और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हमारा स्ट्रक्चर बयान कर रहा है, वो ये, वो मैं आपके सामने अभी पेश किया, वो क्या था? अल्लामा की जबानी के खलीफा खुदा की इस्तेदाद और कैपेबिलिटीज नामुतनाही है, अनलिमिटेड है। बहुत सारे काम इस आलम में खलीफा इलाही के जरिए अंजाम पाने, बहुत सारे उमूर, मसलन मौजूदात आलम के दरमियान अदालत ईजाद करना, ये खलीफा का एक काम है। अब ये अदालत ईजाद करना क्या है, ये सारी चीजें क्या हैं, आप आवा साहब क्यों हमारे सामने पेचीदा बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपके सामने कुछ हेडिंग्स बयान कर रहा हूं, सही है, अगर बात समझ में नहीं भी आ रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम हमारे जो है वो गोश गुजार हो जाए ये बात, मुमकिन है बाद में डीपली समझ में आ जाए, सही है। आप ये लेकिन ये बात मुसल्लम आप नतीजा के तौर पर ले लेंगे, खलीफा खुदा इसकी इस्तेदाद नामुतनाही है, और दुनिया के बाद जो अवालिम है, बहुत सारे उमूर, बहुत सारे काम इन आलम और अवालिम के खलीफा खुदा के जरिए अंजाम पाने हैं। एक और पॉइंट वो ये कि जो अहकाम खुदावंद मुताल के हैं, लेकिन गौर से सुने, ऐसा ना कि अगर आप गौर से ना सुने और ये बात गलत समझ में आए और फिर मुश्किल हो जाए अकायद के अंदर, ऐसा ना हो। बहुत सारे काम जो खलीफा खुदा के हैं और बहुत सारे काम जो खुदा के हैं, देखें खुदा के अपने अहकाम हैं, खुदा का वजूद है, वाजिब वजूद है, और जो है वो बिलाखिर खुदा है, उसके अपने अहकाम हैं और उसके अपने लॉज हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ रूल्स खलीफा खुदा के भी हैं, वो रूल्स, वो लॉज, वो कवानीन, वो अहकाम जो खुदा अपने लिए लागू करता है, वही अहकाम खुदाई खलीफा इलाही के अंदर भी लागू होते हैं, लेकिन खुदा के इज़न से खलीफा इलाही के अंदर वही खुदाई अहकाम है जो खुदा के अंदर मौजूद है, जो खुदा अपनाता है, जिसको खुदा यूज करता है, लेकिन खुदा के इज़न से खलीफा इलाही के अंदर मौजूद है। और किस एतबार से खलीफा इलाही के अंदर खुदाई अहकाम मौजूद है, वो दीगर तमाम मौजूदात के साथ इर्तिबात और कनेक्शन के साथ ये लॉज मौजूद हैं, सही है। अब आप देखें खुदावंद मुताल के अंदर जो सेट ऑफ रूल्स हैं, वो जो जिन लॉस को और अहकाम को यूज करता है, अप्लाई करता है खुदावंद मुताल, अगर दीगर मौजूदात और दीगर मखलूकात ना भी हो तब भी वो रूल्स अपनी जगह बाकी हैं, क्योंकि खुदा बाकी है, खुदा बाकी है, उसके रूल्स भी बाकी हैं, लेकिन खलीफा इलाही के अंदर जो इलाही रूल्स हैं, इलाही कवानीन हैं, इलाही सेट ऑफ लॉज हैं, सही है, वो उस वक्त लागू हो सकते हैं जब दीगर मौजूदात आलम मौजूद हो इस आलम में, वरना जो है वो खलीफा इलाही जो है वो इलाही कवानीन को नहीं अप्लाई कर सकता, सही है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम दोबारा उस पॉइंट पे वापस आ जाते हैं कि खलीफा खुदा नामुतनाही अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज का क्या है, हामिल है, सही है, और मलाइका ये कह रहे हैं कि आप खुदावंद मुताल आप इस लामहदूद मखलूक को महदूद आलम में भेज रहे हैं, तो जब लामहदूद महदूद में जाएगा तो फसाद और खूनरेजी बर्पा करेगा। इस सेशन में और भी अब ये बातें और आगे करनी थी मुझे, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि फिलहाल आप इन बातों को हजम कर लें, सही है, और क्योंकि 40 मिनट्स तकरीबन होने वाले हैं, आप इन बातों को जो अब तक मैंने आपके सामने पेश किए हैं इसको हजम करने की कोशिश करें, इसको एब्जॉर्ब करें, ठीक है, हम इसी जो पॉइंट है उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, यहीं से नामुतनाही से हम अब आगे जाएंगे, सही है, कि वो नामुतनाही क्यों है, सही है, ऐसा खुदा ने इंसान के अंदर क्या रखा है कि नामुतनाही है, सही है। इंशाल्लाह खुदावंद मुताल से तौफीक मांगते हैं कि हम इस बहस को समझ पाएं, अगर इस बहस को समझ सकें, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उलमा की गारंटी ना मेरी गारंटी, मेरी क्या हैसियत है, उलमा और असातीद ये फरमाते हैं कि ये वो बुनियादी तरीन ABC है दीन की, रिलीजन की ABC है, कि अगर इंसान इसको पढ़ ले तो सआदत दुनियावी भी इंसान के शामिल हाल हो जाएगी और सआदत उखरवी भी। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान ये नहीं जान लेता कि वो दुनिया से पहले कहाँ पर था, तब तक वो ये नहीं जान सकता कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, और ये भी नहीं जान सकता कि मुझे कहाँ जाना है। तो जाने के लिए, और ये बात मालूम होने के लिए कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, इंसान इस वक्त किस दुनिया में मौजूद है, किस वजूद के अंदर मौजूद है, उसको ये जानना जरूरी है कि वो पहले कहाँ था, कहाँ से आया है यहाँ पर, आला इल्लियीन से असफल साफिलीन तक कैसे आए, वो आला इल्लियीन क्या था, वो आलम क्या था जिससे जहाँ से वो आया है। इंशाल्लाह खुदा से तौफीक मांगते हैं कि हम इस बहस को समझ सकें और अपनी सआदत दुनियावी और उखरवी को हासिल कर सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
صل على محمد وآل